भागवत सार की श्रृंखला में आज नवे अध्याय पर चर्चा होगी। चर्चा प्रारंभ करने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को गाएंगे और फिर चर्चा प्रारंभ होगी।
सर्वशास्त्राधि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचत कर हान मुंच कदाचिन्मा प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा।
हरे कृष्ण। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पर चर्चा हुई। उत्तरा के गर्भ में वो बाण, वो प्रज्वलित ज्वलंत बाण जिससे रक्षा भगवान ने की, उत्तरा ने प्रार्थना की पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। अपने पति की मृत्यु के बाद सारे वरिष्ठ वहां पर खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, गांडीवधारी अर्जुन भीम इत्यादि, लेकिन उस समय प्रार्थना केवल कृष्ण से की क्योंकि वही एक रक्षा करने वाले हैं। और फिर आगे कुंती महारानी ने प्रार्थनाएं की, कल हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं। आठवें अध्याय के अंत में युधिष्ठिर विलाप करते हैं कि मेरे ही कारण ये जो मेरा शरीर है, ये जो दूसरों के लिए उपयोग में होना चाहिए था, इस शरीर के लिए मैंने इस शरीर से कई लोगों को मार दिया। केवल मेरे कारण इतना बड़ा ये युद्ध हुआ, मैं चाहता तो रोक सकता था। तो ऐसे जब विलाप करने लगे, श्री कृष्ण ने समझाया, मुनियों ने समझाया, वहाँ उपस्थित युधिष्ठिर ने किसी की बात नहीं सुनी, केवल विलाप करते रहे, कोई लाभ नहीं है मेरे जीवन का। और ऐसे समय में फिर वे सब कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली में आते हैं जहाँ पर भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हुए। तो भीष्म अब बाणों की शैया पर हैं, युधिष्ठिर जब आने लगे वहां तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर पूरे राजसी ठाट बाट से जाना, ऐसे नहीं जाना। तो जब युधिष्ठिर आए तो पूरा उन्होंने राजसी ठाट बाट था उनका, उनके साथ सैनिक दास दासियां रथ सजा हुआ, और ऐसे आए भीष्म के सामने ताकि भीष्म देख लें कि अब हस्तिनापुर सुरक्षित है, अब ये राजा हो गया युधिष्ठिर, अब धर्म की स्थापना हो गई, अब मैं अपना देह त्याग सकता हूं। क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं सुरक्षित नहीं देख लूंगा हस्तिनापुर को, अपना देह नहीं त्यागूंगा। तो इसीलिए राजा के ठाट बाट से आए और आकर सब, और उनके साथ बहुत से लोग आए, बहुत से ऋषि मुनि आए। अब नवे अध्याय में इन सब का वर्णन है, नामों का वर्णन है। तो क्यों आए इतने बड़े बड़े ऋषि सारे ब्रह्मांड से? क्योंकि ये बात सारे ब्रह्मांड में फैल गई कि जिस अर्जुन का मोह श्री कृष्ण ने गीता कहकर दूर कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर का शोक वो दूर नहीं कर पाए। वही कृष्ण, वही भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवम अतः सर्वम प्रवर्तते, वो सारे सृष्टि के स्वामी, वो युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं कर पाए। और फिर वो ले जा रहे हैं एक प्रवचन के लिए। अब बड़ा प्रवचन होगा, और कौन कर रहा है प्रवचन? भीष्म। तो इसीलिए सारे ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब सुनने आए कि ऐसा क्या भीष्म कहने वाले हैं जो स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कह पाए, या श्री कृष्ण भी संतुष्ट नहीं कर पाए युधिष्ठिर को, लेकिन अब भीष्म करेंगे। तो वो प्रवचन सुनने के लिए इसके प्रारंभ में पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक ये वर्णन है कि कैसे अलग अलग ऋषि मुनि आए और कैसे वहाँ पर भीष्म ने उन सब का स्वागत किया। तो नामों की सूची बहुत लंबी है। पर्वत मुनि आए, नारद मुनि आए, व्यासदेव आए, वशिष्ठ मुनि आए, अंगिरा मुनि आए, सब की लिस्ट बहुत लंबी। सुखदेव गोस्वामी आए। अब सब सुनना चाहते हैं, प्रवचन होने वाला है बहुत बड़ा। जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति प्रवचन करते हैं तो सबकी उत्साह होता है। प्रभुपाद कहा करते थे, जहाँ कृष्ण का प्रवचन होता है वहाँ सब देवी देवता आते हैं प्रवचन सुनने के लिए। तो सारे लोग चल दिए। परशुराम जी भी आए, ये भी वर्णन है। परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ आए। अब देखिए भीष्म, ये परशुराम जी के शिष्य हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति आए सुनने के लिए, परशुराम जी आए, और अकेले नहीं आए, अपने सभी शिष्यों को लेकर आए हैं परशुराम जी। क्योंकि जो उनके शिष्य थे, कभी कभी परशुराम जी से कहा करते थे कि आप भीष्म का गुणगान बहुत करते हैं। अरे वो तो भीष्म जिसने आपसे युद्ध किया, आपकी बात को माना नहीं, ऐसे शिष्य का आप गुणगान करते हैं, क्या लाभ है। ये कथा आप सब जानते हैं। भीष्म ने अंबा से विवाह करना अस्वीकार किया। अंबा चली गई वन में, परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी ने कहा, कोई चिंता नहीं करो, भीष्म से विवाह करना है, मेरा शिष्य है, अभी करवा देता हूँ, चलो। लेकर आए, भीष्म ने स्वागत किया परशुराम जी का, अपने गुरु का, पूजा की, अर्चना की, पूछा क्या आदेश है। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इससे विवाह कर लो। भीष्म ने कहा, नहीं करूंगा। ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, या तो इससे विवाह करो या फिर मुझसे युद्ध करो। भीष्म ने कहा, क्षत्रिय हूं, युद्ध करूंगा। और भीष्म ने युद्ध किया। तो कैसे शिष्य हैं आपके, ऐसे परशुराम जी को कहते थे कि आपकी बात नहीं मानी, आपसे युद्ध किया। तो आज उन सारे शिष्यों को लेकर आ रहे हैं परशुराम जी कि चलो देखो, ये मेरा शिष्य भीष्म आज प्रवचन करने वाला है। अंतिम समय है उसका, और अंतिम समय में वो जो प्रवचन करेगा उसको सुनने के लिए कौन कौन आए हैं, ये देखो चलकर मेरे साथ। कितना गुणगान, कितना महान है मेरा शिष्य भीष्म, इसको दिखलाने के लिए परशुराम जी लेकर आए अपने शिष्यों को कि देखो। उनको सुनने के लिए व्यासदेव आए हैं, सुखदेव गोस्वामी आए हैं, नारद मुनि, पर्वत मुनि, अंगिरा मुनि, वशिष्ठ मुनि, ये सब आए हैं। सारे ब्रह्मांड से लोग आए हैं केवल भीष्म का प्रवचन सुनने के लिए। तो इतने सारे ऋषि मुनि आए, और भीष्म, अब सब भीष्म के पास आ रहे हैं, और भीष्म पड़े हुए हैं बाणों की शैया पर, हाथ तक जोड़ नहीं सकते। इतने बाण चलाए थे अर्जुन ने भीष्म के ऊपर। ऐसे कहते हैं कि दो बाणों के बीच में एक उंगली का भी अंतर नहीं था, सारे शरीर को भेद दिया था बाणों से। तो भीष्म देव पड़े हुए हैं, हाथ जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मन ही मन जब श्री कृष्ण को देखते हैं, अन्य ऋषि मुनियों को देखते हैं, तो यथोचित जिसका जैसा उचित है उसका सत्कार करते हैं मन से। देखिए भीष्म देव दिखला रहे हैं कि किसी भी अवस्था में हम भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, अपने कर्तव्य को कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो पड़ा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, तीरों से आपका स्वागत नहीं कर सकता। मन से किया। भगवान की भक्ति हर अवस्था में की जा सकती है। कभी ऐसी अवस्था हो जब शरीर साथ नहीं दे, मन से भक्ति करनी चाहिए। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान आए सामने, भीष्म देव ने प्रणाम किया, सारे ऋषि मुनियों का स्वागत किया और फिर ये 11वें श्लोक तक उन्होंने स्वागत, 11वें श्लोक तक हम देखते हैं, पहले कुछ आए सबका आगमन, फिर भगवान आए इन सबका स्वागत किया और 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक वो वर्णन करते हैं पांडवों के कष्टों का और पांडवों को सांत्वना देते हैं। भीष्म देव वर्णन करने लगे कि ये कितने आश्चर्य की और अन्याय की बात है कि ये पांडव जो धर्म का पालन करते हैं इनको कितने कष्ट सहने पड़े। और वो कहने लगे पांडवों से कि आप लोगों ने तो ब्राह्मणों का आश्रय लिया है, आपने तो धर्म का आश्रय लिया है और स्वयं भगवान का आश्रय लिया है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कष्ट, बड़े आश्चर्य की बात है। वैसे भीष्म देव एक बहुत सुंदर प्रश्न को प्रकट कर रहे थे और सबके मन में ये जिज्ञासा हो गई जितने ऋषि मुनि थे कि हाँ यही तो चीजें हैं जो हमें बचाती हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना, धर्म का पालन करना, श्री कृष्ण की भक्ति करना, और ये तीनों चीज इन्होंने की लेकिन फिर भी कष्ट जीवन में। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें भक्तों की सेवा करें, भगवान का आश्रय लें और धर्म का पालन करें, सच्चे धर्म का। तो भीष्म देव ये प्रश्न करने लगे और किन पर ये आपत्ति आई, ऐसे नहीं कि आप सब पापी थे, आप तो धर्म का पालन करते हैं। हाँ किसी ने पाप किया हो, गलत काम किया हो तो स्वाभाविक है उसके जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन आपके जीवन में जिन्होंने कभी पाप किया ही नहीं, धर्म सुत, आप तो धर्म के पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, साक्षात धर्म, और आपके जीवन में इतना कष्ट। वैसे ही भीष्मदेव ये भी समझा रहे थे कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर भक्तों के जीवन में भी ये सब करके कष्ट आ सकता है तो भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। इसी चीज को समझाएंगे अब भीष्मदेव। तो भीष्मदेव ने कहा आपके जीवन में कष्ट और आप धर्मराज, धर्म के पुत्र, साक्षात धर्म, जिन्होंने कभी अन्याय किया ही नहीं, अधर्म का पालन किया नहीं, और फिर अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, विश्व का सबसे बड़ा योद्धा, हाथ में सबसे बड़ा धनुष लिए हुए, सबसे शक्तिशाली धनुष लिए हुए, उसके जीवन में कष्ट। भीम, गदाधारी भीम, उनके जीवन में कष्ट। तो कैसे हुआ ये कष्ट? और सबसे ज्यादा कष्ट तो मैं सोचता हूं कि मेरी पुत्र वधु कुंती को हुए, पति की मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बालक, उनको इतना बड़ा करना और फिर कितने सारे कष्ट जीवन में उसको। तो इतने सारे कष्ट इनके जीवन में आए। अब भीष्मदेव यही सब कहे जा रहे हैं तो सबके मन में आ रहा था कि भीष्मदेव उत्तर दीजिए, कारण बता रहे हैं कि ऐसे हुआ, आपके जीवन में ऐसा हुआ। और फिर भीष्मदेव उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर भी बड़े उस उत्तर को सुनना चाहते थे कि क्या उत्तर होगा कि हाँ हमने धर्म का पालन किया, हम बड़े शक्तिशाली हैं, पाप नहीं किया, हमने ब्राह्मणों की सेवा की, हमने धर्म का पालन किया, अच्युत हमारे साथ हैं भगवान श्री कृष्ण। भीष्मदेव कहते हैं कि ये अर्जुन, ये भीम, ये युधिष्ठिर और सबसे बड़ी बात इनके साथ श्री कृष्ण का होना, लेकिन फिर भी कष्ट। तो कोई मन में जिज्ञासा कर सकते हैं कि कष्टों से दूर जाना है तो भक्ति करनी है, जहां साक्षात भगवान खड़े हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनके जीवन में कष्ट है। तो भीष्मदेव कहते हैं उत्तर देते हैं इस बात का और युधिष्ठिर से कहते हैं, ये जो खड़े हैं सामने, ये साक्षात भगवान हैं, परम सत्य हैं, तुम इन्हें अपना भाई मान सकते हो, संबंधी मान सकते हो, लेकिन हैं जो ये परम पुरुष हैं, कृष्ण हैं, और इनकी योजना को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि यो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, ये कृष्ण की योजना है, और क्यों हुआ कोई नहीं जानता। इसको समझना बड़ा कठिन है। वो कहते हैं कि जब भगवान की योजना होती है तो बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक भी भगवान को नहीं समझ पाते, और वो कहते हैं कि भगवान को समझना है तो शिवजी समझ सकते हैं, नारद मुनि समझ सकते हैं। वर्णन करते हैं कि ये लोग समझ सकते हैं, अर्थात महाजन समझ सकते हैं, लेकिन अन्य किसी के लिए भगवान की योजना को, तो क्यों आपके साथ हुआ ऐसा, ये भगवान की योजना है युधिष्ठिर, जान लो। और इसीलिए अब जो भगवान की योजना है, वो चाहते हैं कि तुम राज्य संभालो, तो तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। भगवान इन सब को लेकर यहां केवल इसीलिए आए थे कि अपने भक्त का गुणगान करवाना चाहते थे। कल भी हम लोग देख रहे थे कि कैसे भक्त भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान भक्त का। तो चाहते तो भगवान जैसे अर्जुन को मोह से निकाला, युधिष्ठिर को भी शोक से निकाल सकते थे, लेकिन वो चाहते थे भीष्म का गुणगान हो। लोग जाने भीष्म की महानता, लोग जाने कि कितने बड़े भक्त हैं, आगे आने वाला इतिहास, आगे आने वाला समाज भीष्म पर दोषारोपण नहीं करे कि इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, अधर्मी का साथ दिया, अधर्मी है। नहीं, ये दिखलाने के लिए कि कितने बड़े, कितने महान भक्त हैं ये मेरे, इसीलिए इस समय पर आए। वैसे अब युद्ध हुए काफी समय हो चुका था। भीष्मदेव जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके 10वें दिन बाणों की शैया पर गिरे थे, और उस दिन से लेकर 53 दिनों तक वो बाणों की शैया पर रहे थे। करीब करीब 2 महीना वो बाणों की शैया पर रहे, क्योंकि युद्ध हुआ था कार्तिक के, कार्तिक में तो सारी सेनाएं आई थी, कार्तिक की जब पूर्णिमा हुई, कार्तिक की अष्टमी, इसमें सारी सेनाएं इकट्ठा आ गईं, और युद्ध प्रारंभ हुआ गीता जयंती के दिवस पर, ये आप सब जानते हैं। तो गीता जयंती से लेकर भीष्म देव ने अपना देह त्याग किया जब सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया संक्रांति के दिवस पर, तो तब तक वो बाणों की शैया पर थे। तो भीष्म देव इतने समय किस लिए बाणों की शैया पर थे, क्यों नहीं उन्होंने देह त्याग दिया, उसका कारण वो इंतजार कर रहे थे श्री कृष्ण के आने का। और अब जब उन्होंने श्री कृष्ण को देख लिया, उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि बस अब श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े रहें। श्री कृष्ण को मान लीजिए भक्त अब आदेश दे रहा है, श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप अब मेरे सामने ही रहिएगा, जाइएगा नहीं जब तक मेरी पूरी चेतना, पूरा मन आप में लग नहीं जाए, मैं जब तक अपना देह त्याग नहीं दूं आप जाइएगा नहीं। क्योंकि भीष्म इसका ही इंतजार कर रहे थे। भीष्म देव अपने उदाहरण से एक आदर्श स्थापित करते हैं कि कैसे देह को त्यागना चाहिए, पूर्ण रूप से मति भगवान में लगाकर। तो वो कहने लगे कि बस अब मैं अपना देह त्यागना चाहता हूं, अब मेरी मति आप में लग जाए, आपको स्मरण करते हुए मैं देह त्यागूं। और जब ऐसी बातें वो कहने लगे तो युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि अरे पूछो जिसके लिए आए हो तुम, नहीं तो देह त्याग देंगे भीष्म देह। प्रवचन जिसके लिए मैंने इतने सारे ब्रह्मांड से लोगों को बुलाया है, पूछो प्रश्न। और उस समय युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने कहा मेरे कुछ जिज्ञासा है, मैं करना चाहता हूं। तो फिर युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए, बड़े विस्तार से इसका वर्णन महाभारत के शांति पर्व में आता है, भीष्म पर्व, जहां भीष्म अपना देह त्यागते हैं। तो उस समय भीष्म ने बहुत सारे विषयों पे कहा राजधर्म, वर्णाश्रम, स्त्री धर्म, इस सब धर्मों को कहा उन्होंने, ताकि बहुत अच्छी तरह युधिष्ठिर समझ जाए। तो यहाँ भागवत में इस अध्याय में केवल 2-3 श्लोकों में उसको कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि विस्तार से तो महाभारत में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा इन सारे धर्मों को कहने के बाद अब वो व्यक्ति जिसने हजारों विषयों पर बोला था, कई समय तक रुके थे, इस समय जब भीष्म अपना देह त्याग कर रहे हैं उनकी उम्र थी 456 वर्ष के थे। इतना लंबा जीवन जो जी चुके हैं, हजारों विषयों पर बोल चुके हैं, कई महान कार्य कर चुके हैं, अब वो उनकी सारी इंद्रियों की गति, इंद्रियों के कार्य बंद हो गए। अब समय आया जब भीष्म देव को अपना देह त्यागना था, और उस समय ऐसा वर्णन है कि जब उनकी सारी इंद्रियों के कार्य बंद हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और फिर दिव्य स्तर पर अर्थात हृदय से अब उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं, 11 श्लोकों में वो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो 18 से लेकर 24 तक तो उन्होंने केवल वर्णन किया कि क्यों आपके साथ कष्ट हुआ, और फिर कृष्ण का गुणगान किया। 25 से लेकर 28 तक युधिष्ठिर को उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिए कि अलग अलग धर्मों का उन्होंने वर्णन किया। और फिर जब वो अपना सारे प्रार्थनाओं को कह चुके या सारे उपदेश कह चुके, शांत हो गए, और अब इस श्लोक से वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। ये श्लोक को पढ़ें। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् हर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्वद् प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम् उपगते क्वचिद्वहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात, अब भीष्म देव अभी तक उपदेश दे दिया, गुरु से सुन लिया, पांडवों ने एक संदेश देते हैं शास्त्र से, गुरु से हमें सुनना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए, तो अब उन्होंने सुन लिया, भक्ति में प्रगति के लिए गुरु साधु शास्त्र बहुत आवश्यक है। हम जो भी करें वो गुरु द्वारा सम्मत, आचार्यों द्वारा सम्मत और शास्त्र में वर्णित होना चाहिए। तो इस तरह इनको कहकर अब वो कह रहे हैं, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा मतलब मेरी ऐसी मति जिसमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा अर्थात इस भौतिक जगत में कुछ भौतिक चीजों को पाने की लालसा, तृष्णा कहते हैं। जैसे कोई मरुस्थल में हो और उसको पानी दूर दिखाई दे, उसे लगे कि वहां पर बड़ा पानी है, वो भाग कर जाए लेकिन देखे गर्म रेत है, इसे तृष्णा कहते हैं। लेकिन अब मेरी मति जो वितृष्णा है, अब मैं चाहता हूं कि मति वितृष्णा हो जाए, केवल आप में लगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी मति को अपनी बुद्धि को दे रहे हैं। आचार्य टिप्पणी करते हैं कि हालांकि भीष्म देव ब्रह्मचारी थे लेकिन उनकी एक पुत्री थी और उस पुत्री को वो कृष्ण से विवाह कराना चाहते हैं। कौन पुत्री है? मति। आप ये मत सोचिए कि कौन पुत्री थी, मति, अपनी बुद्धि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, तो अब अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहते हैं कृष्ण को। और क्या कह रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूमि। आप जो सात्वत अर्थात जो भक्त हैं उनके आप प्रमुख हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में मेरी मति लगे, आपको मैं प्रणाम करूं। तो ऐसे उनको मति भगवान में लगाकर फिर भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम धधाने। कैसे हैं आप, आपका रंग कैसा, पूर्ण रूप से अब भगवान का वो स्मरण कर रहे हैं। और भगवान के किस रूप का स्मरण करते हैं? वो पार्थ सारथी, क्योंकि उसी रूप पर उनका अब ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो वो वर्णन करते हैं उस युद्ध का, अब स्मरण कर रहे हैं कि युद्ध में आप अर्जुन के रथ पर बैठे होते थे और मैं आपका दर्शन करता था। और फिर उस घटना का वर्णन करते हैं कि जिस दिन मैंने प्रतिज्ञा ली कि या तो आज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा या फिर कृष्ण को अपना वचन तोड़ना होगा। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, भागवत में तो इसका विस्तार से वर्णन नहीं, महाभारत में किया गया है कि दुर्योधन हर रोज हर शाम को जाकर भीष्म से कहता था, आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं, अरे मेरा कैसा सेनापति है जो शत्रु को मारना नहीं चाहता। तो सुन सुनकर भीष्म देव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। अरे कैसे मार देंगे? हाँ, ये देखो पांच तीर, ये अचूक हैं, इन तीरों को मैं जिस पर चलाऊंगा उसकी मृत्यु निश्चित है। कल ये पांच तीर मैं पांचों पांडवों के प्रति इस्तेमाल करूंगा, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूं। दुर्योधन बहुत खुश हो गया, लेकिन दुर्योधन ने कहा, भीष्मदेव अभी रात्रि है, रात्रि से सुबह तक पता नहीं आपका मन बदल जाए, क्या हो जाए, इसीलिए तीर मुझे दे दीजिए, मैं ले जाता हूं, बड़ा संभाल कर रखूंगा। दुर्योधन ले गए, कृष्ण अंतर्यामी हैं, जान गए। अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ दुर्योधन के पास। अर्जुन ने कहा, अरे अभी? हाँ रात्रि में, अभी जाओ। याद है एक समय तुमने दुर्योधन की रक्षा की थी जब यक्ष उसको पकड़ कर ले जा रहे थे, तुमने रक्षा की थी, और उस समय दुर्योधन ने कहा था, मांगो अर्जुन, क्या मांगना है, जो चाहो मांग लो। और उस समय तुमने उनसे कहा था कि आज नहीं फिर कभी मांगूंगा। याद दिलाओ दुर्योधन को और जाओ उससे मांगो। क्या मांगो? जब वो कहे कि क्या चाहिए तुम्हें, तो कहना वो पांच तीर दे दो जो तुमने छुपा कर रखे हैं। दुर्योधन बड़ा खुश था, प्रसन्न था। अर्जुन आया, अब तो दुर्योधन को मालूम था कल तो ये लोग मरने वाले हैं, अर्जुन आया खेमे में, स्वागत किया दुर्योधन ने, आओ अर्जुन आओ, क्या बात है? अर्जुन ने कहा, आपको याद दिलाने आया हूं, आपने मुझे वचन दिया था जब यक्षों से मैंने आपकी रक्षा की थी, याद है? याद है अर्जुन, बोलो क्या चाहिए, कुछ मांगना चाहते हो, राज्य चाहिए? दुर्योधन कहता, राज्य चाहिए तुम्हें, दे देता हूं, क्योंकि दुर्योधन को पता था कल मरने वाला, आज राज्य देने से कोई चिंता नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? और दरअसल अगर अर्जुन मांगता तो दुर्योधन दे देता राज्य, पूरा राज्य दे देता, युद्ध बंद कर देता। ये क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय मांगते नहीं हैं, वो कष्ट है, राज्य मांग कर नहीं देते हैं, छीन कर। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, भीम ने कहा कि अगर कुबेर यहां होते भी तो भी मैं मांगता नहीं उनसे, तो क्या चाहिए, मांगो, राज्य चाहिए? अर्जुन ने कहा, नहीं, राज्य तो मैं लड़कर ले लूंगा, वो नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपके पास वो 5 तीर रखे हैं, वो दे दीजिए। दुर्योधन, अरे इसको कैसे पता चल गया, अभी अभी तो मैं लेकर आया हूं वहां से। तो देखिए, क्षत्रिय धर्म का पालन दुर्योधन जैसे व्यक्ति भी करते थे, वचन का पालन, क्योंकि वचन दिया था। दुर्योधन जानता था ये 5 तीर मेरी विजय के सूचक हैं, केवल यही मुझे विजय दिला सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने मांगा, अपने वचन को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने दे दिए। हम सब ये भी सुनते हैं तो हम लोगों को कितनी शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। दुर्योधन जैसा व्यक्ति अपने वचन का पालन करता था, हम लोग अपने आप को भक्त कहकर वचन का पालन नहीं करते। तो दुर्योधन से लेकर आ गए और भीष्म देव सुबह आए तैयार होकर, दुर्योधन लाओ वो 5 तीर, आज मैंने तुम्हें कहा है 5 को मार दूंगा, वचन दिया है मैंने तुम्हें। दुर्योधन ने कहा, वो तो तीर नहीं है। नहीं है, कहां गए? अर्जुन ले गया। अर्जुन को कैसे पता चला तुम्हारे पास है? वो तो मुझे नहीं पता। भीष्म समझ गए, अर्जुन को बताने वाला और कोई नहीं है, कृष्ण है। तो उस समय उन्होंने घोषणा की कि कृष्ण, आपने मेरा वचन तुड़वाया है, क्योंकि अब मैं मार नहीं सकूंगा अर्जुन को, अपने भक्त को बचाने के लिए आपने मेरा वचन तुड़वा दिया, अब मैं और एक वचन लेता हूं, आज ऐसा युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा, या तो अर्जुन मारेगा या फिर कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा युद्ध में, तो आपको अपना वचन तोड़ना पड़ेगा या तो फिर अर्जुन मरेगा। तो ये उस समय का स्मरण कर रहे हैं भीष्मदेव कि मैंने इतने बाण मारे उस दिन, इतने बाण मारे और इतनी तेजी से मैं मार रहा था कि अर्जुन भी संभाल नहीं पा रहा था। सच में महाभारत के उस युद्ध का वर्णन है, अर्जुन अगर भगवान रक्षा नहीं करते तो अर्जुन मारा गया होता उस दिन। बड़ी तीव्र, कोई रोक नहीं पा रहा था भीष्मदेव को, आंधी तूफान, जहां से निकल जाते लाशें ही लाशें, कोई देख नहीं पा रहा था भीष्मदेव कर क्या रहे हैं, कहां, कब वो तीर निकालते हैं, कब चलाते हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। बड़ी तीव्रता से, और अर्जुन पर तो वर्षा कर दी उन्होंने, और अर्जुन भी घबरा गए। और उस समय भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं बाण चला रहा था, एक समय आया जब अर्जुन अपने पसीने को पोंछने के लिए उसको थोड़ा सा समय लगा, और मेरा बाण सीधा उसके गले में जा रहा था लगने के लिए, मृत्यु हो जाती, और आपने अपना कवच सामने, अपनी छाती सामने ले आए अपने भक्त की रक्षा के लिए, आपने अपनी छाती सामने कर दी, और मेरे बाणों से देखिए मेरी धृष्टता, सारथी को मारना नहीं चाहिए लेकिन मैंने आपके ऊपर भी बाण चला है, आपके कवच को तोड़ दिया मैंने अपने बाणों से, और फिर आपकी छाती से खून निकल आया। लेकिन हे कृष्णा, बहुत सुंदर लग रहे थे उस समय, भीष्मदेव वर्णन करते हैं, आपके घुंघराले बाल, उन बालों पर वो कुरुक्षेत्र की धूल लगी हुई थी उड़ उड़कर, आपके माथे पर पसीने की बूंदे थी, मानो मोती लग रहे हो, चमक रहे हैं, और आपके घायल शरीर से खून निकल रहा था, आप बहुत सुंदर लग रहे थे। ये भक्त का भाव है, भक्त भगवान को हर समय सुंदर देखता है। प्रहलाद ने जब नरसिंह देव को देखा, जब फाड़ रहे थे आंतों को निकालकर, उन्होंने गले में डाल रखा था, क्रोध में थे, दहाड़ रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, प्रहलाद को बड़ा आनंद आ रहा था, ये भगवान है। तो भीष्म देव कहते हैं कि उस समय जब मैंने आपका आपका कवच तोड़ दिया और आप बड़े सुंदर लग रहे थे, और जब आपने देखा कि अर्जुन अब युद्ध नहीं कर पा रहा है, तो आपने अपने वचन को तोड़ दिया। और फिर आपने जब उस वचन को तोड़ा, आप खुद उतर आए, रथ से नीचे उतर आए और आपने हाथ में टूटे हुए रथ का पहिया ले लिया और भागे मेरी ओर मारने के लिए मुझे। ये बहुत सुंदर वर्णन महाभारत में है कि जब कृष्ण भागे तो देखिए भीष्म की भक्ति। महाभारत वर्णन करता है कि भीष्म ने सोचा कि आज तक कृष्ण आप चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूं, मैंने युद्ध किया, तीर चलाऊं अर्जुन पे, भीम पे, युधिष्ठिर पे मैंने तीर चलाए, लेकिन आज आपने कहा है कि मैं भीष्म को मार दूंगा, आप ये पहिया उठाकर मेरी और मुझे मारने आए हैं, ये आपकी इच्छा है। भीष्म ने सारे शस्त्र रख दिए और दोनों हाथ जोड़ ली, महाभारत वर्णन करता है दोनों हाथ जोड़कर ऐसे मस्तक पर लगा दिया और भीष्म से कहा आइए मार दीजिए मुझे, ये भक्त है। क्योंकि जब भगवान की इच्छा थी कि मेरे विरुद्ध युद्ध करो, भगवान भीष्म ने किया। भीष्म ने अपना शरीर दुर्योधन को दिया था ताकि उसके ऋण से मुक्त हो सके, लेकिन अपनी आत्मा पांडवों को दी थी ताकि धर्म का पालन कर सके। तो भीष्म, उस समय उन्होंने हाथ जोड़ लिए, श्री कृष्ण आ रहे हैं उनको मारने के लिए, तो उस दृश्य को याद कर रहे हैं कि क्या दृश्य था। श्री कृष्ण आप भाग रहे हैं, अर्जुन ने आपका पांव पकड़ लिया, अर्जुन पीछे आ गए थे उस समय, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमसे ये नहीं होगा युद्ध, अब मुझे ही शस्त्र उठाना पड़ेगा। भागे वो, बड़ी तेज भाग रहे थे। वर्णन है कि अर्जुन ने भाग कर उनके पैर पकड़ लिए कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं करता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं मारूंगा भीष्म को। लेकिन कृष्ण ने सुना नहीं, खींचते हुए ले जा रहे थे अर्जुन को। ये दृश्य सोचिए आप, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अर्जुन ने पांव पकड़ लिया कि नहीं जाना है आप, और उसको खींचते हुए ले जा रहे हैं। भीष्म कहते हैं आपका जो ऊपर का कपड़ा था वो भी गिर गया, उतरिया गिर गया, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं, आप उस समय केवल मुझे मारने के लिए आ रहे थे। अर्जुन पकड़े हुआ, अर्जुन खींच रहा है, आप अर्जुन को घसीटते हुए लेकर आए। क्रोध में थे कृष्ण, भक्त की रक्षा करना चाहते थे, या दूसरी ओर कहना चाहिए भीष्म देव के वचनों को सत्य करना चाहते थे। भीष्म देव ने कहा था कि या तो आज अर्जुन मरेगा या कृष्ण अपना वचन तोड़ेंगे। भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, वचन दिया था मैं नहीं उठाऊंगा, कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अपना वचन तोड़ दिया भीष्म के लिए। बहुत सुंदर सिद्धांत है कि भगवान भक्त की बात रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अरे उनका भक्त कह देता है कि भगवान खंबे में हैं, भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कह देता है कि ना वो मनुष्य हैं ना वो जानवर हैं, भगवान नरसिंह बन जाते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अपने भक्त की बातों को पूर्ण सत्य करने के लिए भगवान न मृगम न मानुषम ऐसे बन जाते हैं, ये भगवान हैं। तो इसीलिए इस अध्याय से बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सीख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपना वचन तोड़ देते हैं। इसीलिए भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, कुंती पुत्र कौन्तेय जाओ तुम घोषणा करो, क्या घोषणा करो, नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा भगवान आप ही घोषणा कर दीजिए कि आपके भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते मैं अपना वचन कभी कभी तोड़ देता हूं लेकिन भक्तों का वचन कभी नहीं तोड़ता। तो इसीलिए नमे भक्तः प्रणश्यति, जाओ तुम जाकर कहो। भगवान भक्तों के वचन की रक्षा करते हैं, भीष्म के वचन की रक्षा की, भीष्म की इच्छा थी। दरअसल जब मारने का वचन उन्होंने लिया तो भीष्म की इच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं था कि भीष्म पांडवों को मारना चाहते हैं तो दुर्योधन के कहने पर बोल दिया उन्होंने, इसलिए उस वचन को तो भगवान ने पूरा नहीं किया। लेकिन जो भीष्म की इच्छा थी कि मैं देखना चाहता हूं कि आप शस्त्र उठाएं, भगवान ने शस्त्र उठा लिए, अपने भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। तो ऐसे उस पूरे दृश्य को वो याद करने लगे कि आप ऐसे पार्थ सारथी, आप ऐसे मेरे सामने रहें, ऐसी मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ। तो भीष्म देव की ये प्रार्थनाएं हैं, आगे उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। वो केवल उस दृश्य को ही याद नहीं कर रहे हैं ताकि लोग ये ना सोचें कि केवल पार्थ सारथी के रूप में ही कृष्ण का अस्तित्व है। तो जब उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने अपने वचन को तोड़ दिया, और तब वो भगवान का गुणगान करने लगे कि मेरी मति अब इस समय में उन भगवान में हो, उन श्री कृष्ण में, जो केवल युद्ध में नहीं अर्जुन की सहायता कर रहे हैं। फिर उन्होंने वर्णन ब्रज का किया, श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया कि किस तरह श्री कृष्ण परम सत्य हैं और वही श्री कृष्ण ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, राजसूय यज्ञ इत्यादि का वर्णन करते हुए वो प्रार्थना करने लगे कि बस अब मैं पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण आए हैं मुझ पर कृपा करने, मेरे जैसे व्यक्ति पर कृपा करने के लिए जिसने बाण चलाए उनके ऊपर, शरीर को घायल कर दिया, उनके भक्त पर बाण चलाए, लेकिन मुझ पर कृपा करने के लिए आज ये मेरे सामने आए हैं। और अब इस समय इनको देखते हुए, इनका स्मरण करते हुए, अपनी मति अपनी चेतना पूर्ण रूप से इनमें लगाते हुए अब मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। और फिर सुत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे समय में फिर उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिया और देह को त्याग दिया। तो भीष्म देव ने अपने देह को त्यागा, हम सबको एक आदर्श प्रस्तुत किया कि मृत्यु के समय हमें श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। जब मृत्यु आए तो भयभीत नहीं होना चाहिए, कृष्ण के उस रूप को याद कर लेना चाहिए, ब्रजवासियों को याद कर लेना चाहिए, भक्तों को याद कर लेना चाहिए, और फिर श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, उनके बारे में श्रवण करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हमें अपने देह को त्यागना चाहिए। तो इस प्रकार इन श्लोकों में भीष्म का 43वें श्लोक तक भीष्म का देह त्याग है, और फिर 44वें श्लोक से जब सब लोगों को पता चला कि भीष्म देव ने अपना देह त्याग दिया तो सब ने गुणगान किया भीष्म देव का। ये पद्धति है, सबको बुलाया ही इसीलिए था भगवान ने कि उपदेश सुनो भीष्म से, प्रवचन सुनो और देखो कि कैसे कितने शुद्ध भक्त हैं भीष्म। और उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया कई स्थानों पर अपनी प्रार्थनाओं में, वो कहते हैं कि यही परम सत्य हैं, श्री कृष्ण ही भगवान हैं। बार बार युधिष्ठिर को भी कह रहे थे इन्हें तुम अपना भक्त भाई संबंधी मान रहे हो, लेकिन हैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और इनकी इनका श्रवण, इनका इनकी कथा का स्मरण, इनका स्मरण ही जीवन की संतुष्टि है, समसिद्धि है। सच्चा धर्म वही है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, वो धर्म है जिससे हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो ऐसे धर्म का पालन भीष्म देव हमें सिखला रहे हैं। और अंतिम श्लोकों में 44 से 39 तक फिर धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले गए, भीष्म देव ने अपना देह त्याग दिया, और फिर सारे जो ऋषि मुनि आए थे उन्होंने गुणगान किया भीष्म देव का, और फिर इस तरह से महाराज युधिष्ठिर भी फिर अपने स्थान वापस चले गए। और अब क्योंकि जो जिस उद्देश्य से कृष्ण रुके थे वो उद्देश्य पूरा हो गया, तो अब अगले अध्याय में श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।